वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि भारतीय या वैदिक आर्य प्रारंभ में असुर शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में करते थे, पर बाद में वे इसे बुरे अर्थों में प्रयुक्त करने लग गए थे। साथ ही यह भी निर्विवाद है कि ब्राह्मण ग्रंथों में देवों और असुरों के युद्धों का वर्णन है और वैदिक संहिताओं में भी इंद्र सदृश देवता को असुरों का वध करने वाला कहा गया है। प्रश्न यह उठता है कि ये असुर कौन थे? संबर, वर्चीन और पिप्रू सदृश जिन व्यक्तियों के लिए ऋग्वेद में असुर विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में ही उन्हें दास एवं दस्यु भी कहा गया है। जिस पिप्रू को एक मंत्र में असुर कहा गया है, उसी के लिए अन्यत्र दास विशेषण प्रयुक्त है। इसी प्रकार वर्चीन असुर भी हैं और दास भी। एक मंत्र में वर्चीन और असुर दोनों के लिए दास विशेषण का प्रयोग विद्यमान है। यही बात कतिपय अन असुरों के संबंध में भी कही जा सकती है और स्वाभाविक रूप से इससे यह परिणाम निकालने की प्रवृत्ति होती है कि जिस दास या दस्यु जाति को परास्त कर भारतीय आर्यों ने इस देश में अपने राज्यों की स्थापना की थी, उसी का अन्य नाम असुर था। दास व दस्यु जाति इन असुरों का वध करने के कारण ही इंद्र, अग्नि तथा सूर्य को असुरधन या असुराहा कहा गया है। पर इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं। दस्यु एवं बादासों को ऋग्वेद में अनास अर्थात नासिका से भी रहित या चपटी नाक वाले, आयजेउ यज्ञ न करने वाले, अव्रत तथा अन्य व्रत जिनके व्रत भिन्न हो या हो ही नहीं, देव पीयु देवों से घृणा करने वाले और मृग्र वाच्य जिनकी बोली समझ ही न जा सके आदि कहा गया है, जिससे उनका आर्यभिन्न जाति का होना सूचित होता है। इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में असुरों को देवों का बड़ा भाई कहा गया है और जैसा कि हमने अभी ऊपर लिखा है, ऋग्वेद में भी असुर शब्द वरुण, मित्र, इंद्र और ध्रुव जैसे देवताओं के लिए प्रयुक्त है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर असुरों की दास व दस्युओं से एकता प्रतिपादित करना संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बाद में भारतीय आर्य असुर शब्द को बुरे अर्थों में और विरोध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त करने लग गए थे। अतः संबर, पिप्रू, वर्चीन आदि दस्यु या दास जातीय व्यक्तियों को भी उन्होंने असुर कह दिया। यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। आर्यों की भारतीय और ईरानी शाखाओं में घनिष्ठ संबंध था। वे चीरकाल तक एक साथ रही थी। प्रारंभ में उनका धर्म एक था और वे एक ही देवताओं की उपासना किया करती थी, पर समयांतर में उनमें विरोध उत्पन्न हो गया। ऐतिहासिकों का यह मत है कि ईरानी आर्य प्रधानतया मित्र और वरुण मित्रावरुणों की पूजा करने लगे और भारतीय आर्य इंद्र की। मित्र और वरुण को ईरानी आर्य असुर कहने लगे और इंद्र आदि को भारतीय आर्य देव। यद्यपि प्रारंभ में असुर और देव शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त हुआ करते थे। इस प्रकार एक आर्य जाति की दो शाखाएं दो विभिन्न एवं परस्पर विरोधी धर्मों का अनुसरण करने लगी, पर उनके धार्मिक मंतव्यों एवं पूजा विधि में जहां अनेक भेद विकसित हो गए, वहां उनके सादृश्य भी पर्याप्त रूप से विद्यमान रहा। वैदिक आर्यों के समान ईरानी आर्य भी अग्नि के पूजक थे। कुंड में अग्नि का आधान कर उसकी पूजा करना उनके धर्म का महत्वपूर्ण अंग था। वर्तमान समय के पारसी लोग जो प्राचीन ईरानी आर्यों के उत्तराधिकारी हैं और कुछ परिवर्तित रूप में उन्हीं के धर्म के अनुयायी हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यद्यपि भारतीय आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञाग्नि का महत्व कम हो गया है और उसका स्थान मंदिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियों की पूजा ने ले लिया है, पर पारसी लोगों के धर्म स्थानों में अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा जाता है। अग्नि को पवित्र मानने के कारण ही पारसी सबों का दाह नहीं करते। सूर्य या मित्र भी अग्नि का ही एक रूप है। ईरानी आर्यों के धर्म में इस उपास्य देवता का विशिष्ट स्थान था और वे मिथ अर्थात मित्र या सूर्य की पूजा किया करते थे। मिथ के समान वे वरुण भी के भी पूजक थे। वरुण और वरुण की एकता में संदेह नहीं किया जा सकता। ईरान में सोमलता को प्राप्त करना सुगम नहीं था क्योंकि यह उत्तर पश्चिमी भारत के पार्वत्य प्रदेश में ही उत्पन्न होती थी, पर ईरानी आर्य सोम को भूले नहीं थे। उनके धर्म ग्रंथ अवेस्ता में होम के रूप में सोम की महिमा का बखान किया गया है। होम सोम को ही कहते हैं। उच्चारण भेद से ईरानी आर्यों ने सोम को होम कहना शुरू कर दिया था। वैदिक आर्यों और ईरानी आर्यों के धर्मों में कितनी ही अनसम्मताएं भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। अपान पात देवता वेदों में भी हैं और अवेस्ता में भी। वेदों का गंधर्व अवेस्ता में गंधर्व के रूप में है और वेद का कृषाणु कृषाणी के रूप में। विवस्वान के पुत्र यम को वेदों में यमलोक का स्वामी कहा गया है और अवेस्ता में विवनहंत का पुत्र ईम स्वर्गलोक का अधिपति है। यागिक कर्मकांड के साथ संबंध रखने वाले कितने ही शब्द वैदिक और प्राचीन ईरानी साहित्य में एक सदृश हैं। अवेस्ता में होता को जाओतर, अर्थवन को अर्थुवन, मंत्र को मंत्रु, यजत को यजस्त, यज्ञ को यस्न और आहुति का आजूति कहा गया है, जो स्पष्टतया एक ही मूल के शब्द हैं। ईरानी आर्यों के प्राचीन धर्म का जो परिचय हमें प्राप्त होता है उसका मुख्य आधार अवेस्ता है, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है। पर यह ग्रंथ उस सुधार की प्रक्रिया का परिणाम है जिसका प्रवर्तक जरथुस्व नामक सुधारक था। ईरान के प्राचीन इतिहास में उसका वही स्थान है जो भारत के इतिहास में बुद्ध का है। यही कारण है जो अवेस्ता द्वारा धर्म का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वह अनेक अंशों में उन प्राचीन आर्यों के धर्म से भिन्न है जो अत्यंत प्राचीन काल में वैदिक आर्यों से पृथक हो गए थे। पर अवेस्ता के अनुशीलन से भी इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ईरानी आर्यों और वैदिक आर्यों के धर्म में बहुत सी समानताएं थी। वैदिक और ईरानी आर्यों में वैमनस्य और वैर के प्रादुर्भाव के क्या कारण थे, इस संबंध में विद्वानों ने अनेक उटकंगनाएं की है। एक मत यह है कि आर्य जाति के आदि धर्म में जिन देवताओं की उपासना की जाती थी वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक मात्र थे। धौ वायु अग्नि आदि प्रकृति के ही अभिन्न अंग हैं और इन्हीं के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में आर्य लोगों द्वारा विविध देवताओं की कल्पना की गई थी, पर बाद में कतिपय भाव रूप देवताओं को भी परिकल्पित किया गया जिनमें वरुण प्रमुख था। ऋग्वेद में वरुण को सब देव असुर और मनुष्य का राजा कहा गया है। वे धृत व्रत हैं, उनके नियम सदा स्थिर रहते हैं और वे अपने स्पर्शों अर्थात चरों तथा पासों से सबको उनका पालन करने के लिए विश्वास करते हैं। इंद्र प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक रूप देवताओं में प्रधान थे और वरुण भाव रूप देवताओं में। ऋग्वेद में इन दोनों के स्तुति के बहुत से मंत्र विद्यमान हैं। समयांतर में आर्यों में इस प्रश्न पर मतभेद हो गया कि देवताओं में वरुण प्रधान हैं या इंद्र। भाव रूप देवताओं को महत्व देने वाले लोग अपने को असुर का उपासक कहने लगे क्योंकि असुर विशेषण का प्रयोग प्रधानतया वरुण के लिए ही किया जाता था। जैसा कि ऋग्वेद से सूचित होता है, इंद्र को महत्व देने वाले लोग अपने को देव का उपासक कहने लगे। यद्यपि प्रारंभ में असुर और देव में कोई विशेष भेद नहीं समझा जाता था, देव और असुर के उपासकों में भेद व वैरभाव इतना अधिक बढ़ गया कि वे परस्पर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उनका एक साथ रह सकना संभव नहीं था। भारतीय आर्यों की भाषा में असुर का अर्थ दैत्य व राक्षस हो गया और ईरानी आर्य देव शब्द को घृणित व विद्विष्ट अर्थ में प्रयुक्त करने लगे। आर्य जाति के इन दो वर्गों में परस्पर विद्वेष का ही यह परिणाम हुआ कि वे एक साथ निवास नहीं कर सके और उन्होंने दो देशों भारत और ईरान में जाकर अपनी विविध राज स्थापित किए। आर्यों की इन दो शाखाओं में जो संघर्ष हुआ उसकी स्मृति ही ब्राह्मण ग्रंथों में देवासुर संग्राम के रूप में सुरक्षित है। जिस रूप में शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य साहित्य में इसका वर्णन किया गया है उसे यहाँ लिख सकना संभव नहीं है। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि ईरानी आर्यों और भारतीय आर्यों में विरोध भाव ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था कि युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से उसकी परिणति संभव ही नहीं रही थी। चौथा, पश्चिम एशिया में आर्य जातियों एवं राज्यों की सत्ता। सप्त सिंधव देश, मध्य एशिया या उत्तरी ध्रुव, जहाँ कहीं भी आर्यों का आदि निवास स्थान रहा हो वहाँ से उनकी विविध शाखाएँ पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों में भी जाकर आबाद हुई। ईरान के दक्षिण पश्चिम में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश प्राचीन काल में सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सुमेरियन इसकी प्राचीनतम सभ्यता थी जिसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। बाद में इस क्षेत्र में कैल्डियन अर्थात कालदी लोगों ने अपना राज स्थापित किया और फिर बेबीलोनियन बाबुली लोगों ने। इन बेबीलोनियन लोगों का मुख्य देवता असुर था जिसके नाम पर उन्होंने यूफ्रेटस दजला नदी के पश्चिमी तट पर एक नगर भी बसाया था। असुर के राजा साल्मनेसर ने 1300 ईसा पूर्व के लगभग प्रायः संपूर्ण बेबीलोनिया को जीतकर अपने अधीन कर लिया था और इस समय से बेबीलोनियन लोगों का राज असीरिया कहने लगा था। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश जिसे वर्तमान समय में इराक या मेसोपोटामिया कहते हैं कि इन प्राचीन सभ्यताओं का वैदिक युग के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। इस प्रदेश के प्राचीन अवशेषों में सगौना की लकड़ी का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। विद्वानों के मत में जिसे भारत से ही प्राप्त किया गया था, जिन अवशेषों में यह लकड़ी मिली थी उन्हें 3000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। इस क्षेत्र की पुरानी भाषा में मलमल के लिए सिंधु शब्द था। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन बेबीलोनियन व असीरियन साम्राज्य का भारत के साथ व्यापारिक संबंध था और सिंधु देश की मलमल वहां बड़ी मात्रा में बिकने के लिए जाया करती थी, जिसके कारण वहां के निवासी मलमल के लिए सिंधु शब्द को ही प्रयुक्त करने लग गए थे। बेबीलोनियन व असीरियन लोगों का तोलने के लिए एक मान मन्ना था। ऋग्वेद के एक मंत्र में भी हिरण्याय मन्ना का उल्लेख है जिसे एक तोल का घोतक समझा जाता है। ये सब तथ्य यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्राचीन समय में भारत और बेबीलोनियन राज्य में संबंध की सत्ता थी, पर बेबीलोनियन अर्थात असीरियन लोगों के धार्मिक मंतव्यों की भी वैदिक आर्यों के धर्म से समता थी। उनके प्रधान देवता अनु और बल थे जिन्हें वे असुर भी कहते थे। ईरानी आर्य भी असुर महत के उपासक थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। असुर के उपासक होने के कारण ही संभवतः इराक के इन निवासियों को असीरियन या असुर कहा जाता था। बल या वल का ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में उल्लेख है। वह भी असुर के समान इंद्र का विरोधी व शत्रु था और उसे पराभूत करने के कारण इंद्र के लिए बलमरुज विशेषण भी प्रयुक्त किया गया है। वैदिक आर्यों की दृष्टि में बल की वही स्थिति थी जो असुर की थी, पर असीरियन लोगों के ये दोनों प्रधान देवता थे। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो असीरियन लोगों को भी ईरानी आर्यों के समान विशाल आर्य जाति की एक शाखा मानना होगा। असीरियन लोगों के अन्य देवता अनु और दगनु थे जिन्हें अग्नि और दहन के साथ मिलाया गया है। वे लोग देवता को मतु कहते थे जो संभवतः मरुत का ही एक रूप था। सूर्य देवता के लिए वे दियनिसु शब्द प्रयुक्त करते थे, जिसे दिनेश के साथ मिलाया जा सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में उनका यह मत था कि प्रारंभ में केवल अशु, अपशु और तियमत की सत्ता थी। सृष्टि का प्रादुर्भाव बाद में हुआ। वैदिक आर्य भी यही मानते थे कि सृष्टि से पूर्व सर्वत्र तम व्याप्त था और फिर आपह द्वारा सृष्टि बनी। तियमत तम का और अपशु आपह का ही रूप है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के क्षेत्र के इन प्राचीन सभ्यताओं के जिन अनेक राजाओं के नाम वहां के भग्नावशेष में उपलब्ध तख्तियों पर किलांकित रूप से उत्कीर्ण मिले हैं, उनमें कतिपय नाम ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा के नामों से बहुत मिलते जुलते हैं। इन तथ्यों के दृष्टि में रखकर यह कल्पना भी की गई है कि ईरानियन लोगों के समान असीरियन लोग भी आर्य जाति के ही एक शाखा थे और अपने ईरानी बंधुओं के समान वे भी असुर के उपासक थे। पश्चिमी एशिया के तुर्की राज्य के अंतर्गत बोगजकोई नामक स्थान पर उपलब्ध प्राचीन भग्नावशेष में मित्तनी जाति के राजा मतेयूज और खत्ती या खत्ती जाति के राजा सुबिल्लीम के बीच हुई एक संधि पत्र मिला है, जिसके अंत में यह प्रार्थना की गई कि मित्र वरुण इंद्र और नासत्यो इस संधि को स्थिर रखें। ये सब वैदिक देवता हैं और बोगजकोई के संधि पत्र में इनका उल्लेखित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मित्तनी और खत्ती लोग वैदिक देवताओं के उपासक थे। इजिप्टी के तेल अल अमरना नामक स्थान पर अनेक ऐसे पत्र मिले हैं जो मिट्टी की तख्तियों पर किलांकित रूप से उत्कीर्ण है। इन पत्रों में पश्चिमी एशिया के राजाओं के कतिपय ऐसे नाम भी आए हैं जो संस्कृत के प्रतीत होते हैं। ऐसे कुछ नाम दशरथ, अर्तमन्य, यशदत्त, सुतर्ण आदि है। बोगजकोई के संधि पत्र को 1400 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है और तेल अल अमरना को भी लगभग इसी काल का। ये सब प्रमाण यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त हैं कि ईस्वी सन से 1400 वर्ष पूर्व के लगभग तुर्की और सीरिया के प्रदेशों में ऐसी जातियों के राज थे जिन्हें आर्य परिवार का कहा जा सकता है। इन प्रदेशों में आर्यों के धर्म तथा भाषा की सत्ता थी, यह तो निर्विवाद है, पर इन प्रदेशों की जातियों का भारतीय आर्यों के साथ क्या संबंध था, इस विषय में जो अनेक मत हैं उन सबको यहाँ उल्लेखित कर सकना संभव नहीं है। बोगजकोई के मित्तनी और खत्ती लोगों को ईरानी आर्यों की अन्यतम शाखा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके संधि पत्र में इंद्र का भी उल्लेख है, जिसे प्राचीन ईरानी दैत्य सम मानते थे। संभवतः मित्तनी और खत्ती ऐसी आर्य जातियाँ थीं जो असुर और देवों के विरोध व संघर्ष से पूर्व ही पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जा बसी थी। पश्चिमी एशिया की एक अन्य प्रजाति फिनिशियन थी, जिसकी बस्तियाँ प्रायः भूमध्य सागर के पूर्वी और दक्षिणी तट पर स्थित थी। यह एक व्यापारी जाति थी जिसे लैटिन भाषा में प्यूनी कहा जाता था। प्यूनी को ऋग्वेद के पन्नी के साथ मिलाया गया है। पन्नियों के विषय में इस ग्रंथ में पहले लिखा जा चुका है, यहाँ निर्दिष्ट कर देना आवश्यक है कि फिनिशियन लोगों के मुख्य देवता बल और उरन अर्थात वरुण थे। इनका संबंध असुरों से था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। संभवतः वैदिक युग के भारत के असुर पन्नी लोगों ने ही सुदूर पश्चिम में जाकर अपनी वे बस्तियां कायम की थी जो प्राचीन रोमन इतिहास में प्यूनिक कहलाती हैं। समाप्त।